Listeners, welcome to today's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I'm Sarabjeet Kaur.
धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
जी, बहुत धन्यवाद.
पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
डोमेस्टिक मार्केट्स टू फोकस ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग रिजल्ट्स, इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स एंड आईपीओज फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक. Foreign portfolio investors pump in nearly 1900 crore rupees into the Indian debt markets in July so far. And Prime Minister Narendra Modi to embark on a four-day visit to UK and Maldives from Wednesday.
अगले सप्ताह भारतीय बाजारों का फोकस रहेगा कंपनियों की आमदनी के नतीजों, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता और आईपीओज पर. विदेशी निवेशकों ने जुलाई में अब तक भारतीय ऋण बाजार में लगभग 1900 करोड़ रुपए का निवेश किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 4 दिन की ब्रिटेन और मालदीव्स यात्रा पर रवाना होंगे.
Yes, Subodh, let's see what's the first big news of the day. After 3 weeks of decline, the domestic markets are expected to keep an eye on quarterly earnings reports, outcome of the India-US trade negotiations and IPO next week. Market sentiment will likely be shaped on Monday by investors' reaction to the June quarter results of heavyweight firms including Reliance Industries, HDFC Bank and ICICI Bank. Looking ahead, several other major firms, including Infosys, Dr. Reddy's Laboratories, Bajaj Finance, Nestle and Ultratech Cement, will announce their results next week. The fifth round of bilateral trade discussions between India and the US concluded on July 17th in Washington, with both nations pushing to finalize an interim trade pact before the August 1st deadline. The primary market will also witness action next week as a total of 10 IPOs will hit the Lal Street along with 3 companies scheduled for debut on the bourses next week starting from July 21st. Both segments, main board and SME, will have an equal number of public issues. And I can see that Shri Krishna has connected with us from Delhi. Shri Krishna ji, apna sawal poochiye.
Ji, good evening everybody. Maine 5 saal pehle एक नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी में 2 लाख रुपए दिए थे फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स. 1 लाख मेरी वाइफ के नाम से, 1 लाख अपने नाम से. 2 साल के बाद मेरी वाइफ का अकाउंट उन्होंने लिक्विडेट कर दिया एज स्टेटिंग दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड और देयर चार्जेस एटसेट्रा. सो दैट 1 लाख गॉट लिक्विडेटेड. आफ्टर दैट व्हेन आई रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई, they said, okay, we'll revalidate your account. Now, for the last about 2 months, I hear no news from them, but I don't even get to know. They sent some statements which are all Latin to me. I don't understand. I am not a finance man. Maine isliye finance company ko paise diye the ki wo meri investment karenge. Usme mera paisa zero ho jata hai. So what recourse do I have to recover at least my principal amount, if not interest amount? Can you help me?
Sure. So, Mr. Shri Krishna, apparently what you are saying, smells fishy a little bit, does not seem the right, and legitimately one can question the intent of the company with which you made your investment, although, more clarity will come with more details. But prima facie, what I can suggest to you is to log in to the website of SEBI, Securities and Exchange Board of India, and they right now have an investor grievance mechanism which is highly responsive, and they do take care of investors. Over there, you will find a link to the SCORES website, which is the SEBI's grievance redressal mechanism. So with all the appropriate documents, statement or evidence that you have, or any emails that you might have exchanged with them, I would highly recommend you to lodge a complaint at the SCORES portal, which you can access through SEBI website. And I'm very hopeful you would be heard. There are some very stringent timelines which are put upon the registered intermediaries to respond to any such grievances. So once you put in your complaint, the requisite intermediary would need to file a response within 21 days. And if you're not satisfied with the response, you have further recourse, you can escalate that. So there's an entire mechanism, and I'm sure your grievance would be heard there.
जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से, मनीष, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। मनीष, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं?
हाँ, हेलो, नमस्कार सर।
नमस्कार
सर, मैं पूछना चाह रहा था, ये क्वांट्रो कैपिटल क्वांटम एआई में इन्वेस्ट करना कैसे रहेगा सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। क्वांट्रो कैपिटल क्वांटम एआई,
क्वांट्रो कैपिटल क्वांटम एआई, इसके बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, शायद हम आगे कभी कार्यक्रम में आपको बता पाएं। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, बेंगलुरु से एनआर प्रसाद हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर। मिस्टर गुप्ता, दिस इज माय फोर्थ कॉल ऑन द सेम क्वेश्चन, गिव मी एनी टू थ्री मल्टी एसेट mutual fund names where I can invest for next 3 to 5 years. Thank you. I'm looking for the names of the three good.
So multi-asset, multi-asset funds by design, as their name suggests, they invest in a combination of three asset classes at least, that's equity, debt, and typically commodities. Now there are different funds. Now the nuance about this category is that although it is one multi-asset category, but the funds can differ significantly on their risk-reward equation, because the broad mandate is that they would invest some portion of their money in equity, debt, and commodities like gold and silver. But you, once you scratch the surface and look beneath, you would find that different funds can have very different allocation to these asset classes, and therefore the risk-reward equations can be very different. So it would be very difficult to give you names of two or three specific funds, because each fund in the category can vary. So it is a function of your risk appetite, the time horizon, what you are looking at, basis which one can narrow down on a particular multi-asset fund. So it will not be prudent to give you specific names as such.
All right, our next caller, should we take that first, Subodh? Our next caller is from Mumbai. Ratnakar, please ask your question.
रत्नाकर जी, आप सुन पा रहे हैं? आपने रेडियो की आवाज कम कर लें।
हेलो, हेलो
जी, अपना सवाल पूछें।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग,
मेरा सवाल है कि ये जो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है वो कैसा है, उसमें SWP चालू करना उचित रहेगा क्या? और दूसरा सवाल है कि ये जो ELS फंड जो हम लेते थे उसका जनरली टैक्स सेविंग के लिए उसका उपयोग होता था, अभी समझो न्यू रिजिम में हम जा रहे हैं तो उसका ELS फंड का उतना तो यूज नहीं है, तो ELS फंड लेना चालू रहना अच्छा रहेगा क्या? थैंक यू
जी। पहला आपका सवाल, HDFC बैलेंस एडवांटेज एक अच्छा फंड है अपनी कैटेगरी का, अच्छी उसकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस रही है, तो अगर आप एक ऐसा फंड चाहते हैं तो जो कभी तकरीबन 40-50-60% तक आपका पैसा इक्विटी में निवेश करते हैं और बचा हुआ डेट में, और इसको पीरियोडिकली वो डायनामिकली मेंटेन करते हैं उनकी मार्केट की असेसमेंट के हिसाब से, तो उस टाइप के फंड्स की कैटेगरी में HDFC बैलेंस एडवांटेज एक रीजनेबली अच्छा विकल्प है, तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरा आपका सवाल ELSS कैटेगरी के लिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम पर मूव कर गए हैं तो ELSS में इन्वेस्ट करने से जो टैक्स एडवांटेज आपको मिलता है वो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद ELSS का जो एक ओवरऑल एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन आपको देना, उसमें वो अभी भी सक्षम है। हाँ, अगर उनमें 3 साल का लॉक इन जरूर रहता है, तो अगर आपको 3 साल के लॉक इन से कोई खास परेशानी नहीं है तो आप ELSS फंड में जारी भी रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेफर करते हैं कि थोड़े आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि अगर कभी आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए और आप निकाल पाएं, वो फ्लेक्सिबिलिटी आप प्रेफर करेंगे, तो आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या वैल्यू इस टाइप की कैटेगरीज में विकल्प देखें।
अगले कॉलर है उत्तर प्रदेश से HR गौतम, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
नमस्ते सर।
नमस्कार,
HR गौतम ललितपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर।
जी सवाल पूछे।
जी सर, हमारा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम कितने म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, पहला तो हमारा ये है। और दूसरा सर ये है कि आप जो बताते हैं कि इसमें जो टैक्स लगता है, तो उसमें जैसे मान लीजिए किसी की जो टैक्स के जो उसमें इन्वेस्ट हुआ उसमें जो मान लीजिए 1 लाख है या 2 लाख है, तो उसकी कोई सीमा है कि कितना भी होगा उस पर टैक्स लगेगा?
जी,
पहला आपका सवाल कितने फंड में निवेश करना चाहिए। देखिए, ये सवाल जरूरी है कि आप ये देखें कि आपके निवेश का स्केल कितना है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं तो एक अकेला फंड भी 40-50-60 स्टॉक्स का एक अपने आप में पूरा पोर्टफोलियो होता है। सो इवन अ सिंगल फंड एक अपने आप में कंप्लीट पोर्टफोलियो है। अगर आप एक छोटे निवेशक हैं या शुरुआती निवेशक हैं, आप 2-4-5 हजार रुपए तक का मासिक SIP करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक फंड भी पर्याप्त है। लेकिन जैसे जैसे आपका स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो आप 2 या 3 फंड डाल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर आपका काफी बड़ा स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो भी मेरे ख्याल 4-5 फंड से ज्यादा की आमतौर पर किसी की जरूरत पड़ती नहीं है। एक 4-5 फंड में आपका एक वेल डाइवर्सिफाइड पूरा भरा पूरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के जरिए बन जाता है। तो एक फंड से शुरुआत करके आप 4-5 फंड तक अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं।
और दूसरा, इन्होंने टैक्स का पूछा था कि उसकी सीमा क्या है, मुझे लगता है ये जानना चाहते हैं कि कैपिटल गेन्स कितना कहां तक, कहां से शुरू होता है।
देखिए, जो कैपिटल गेन्स म्यूचुअल फंड्स पे बात करते हैं, अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करते हैं, तो अगर आप 1 साल से कम निवेश करते हैं तो जितना भी आपके पास गेन बनेगा उसका 20% बेचने पर, जब आप बेचेंगे यूनिट्स, तो जो आपको कैपिटल गेन मुनाफा होगा उसका 20% आपको टैक्स देना होगा। और अगर 1 साल से ज्यादा तक आप होल्ड करते हैं तो ये टैक्स दर 20% से घटके 12.5% हो जाती है। लेकिन इसमें हर साल आपको पहले 1.25 लाख का जो आपका गेन होगा वो आपके लिए टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो अगर आप किसी साल इतना म्यूचुअल फंड बेचते हैं कि आपका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही गेन 1 लाख तक बन रहा है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जहां आपका गेन 1.25 लाख से ऊपर जाएगा, तो वो जो 1.25 लाख के ऊपर का मुनाफा है उस पर आपको 12.5% गेन देना होगा। और अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम ही थ्रेशोल्ड से नीचे है जो टैक्सेबल है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
Our next caller is from गाजियाबाद। गौरव, अपना सवाल पूछिए।
नमस्ते सर, 2-3 स्ट्रेटेजी में कौन सी सही याद रहेगी? मेरे पास एक अमाउंट है बहुत 5 लाख, मेरे बच्चे को किसी ने दिया है, तो क्या उसमें भूल जाऊँ क्योंकि वो 5-10 साल तक चाहिए नहीं, या दूसरा तरीका है कि मैं उसको एक डेट फंड डाल दूँ, शॉर्ट टर्म डेट फंड, मेरे 18 महीने में उसको स्विच कर दूँ फ्लेक्सी कैप में, या फिर बिना ज्यादा वो सोचे स्मॉल कैप में लगा दूँ ऐसे ही थ्रू डेट फंड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए है। तो तीन आपके हिसाब से किसमें मुझे ज्यादा?
देखिए, आपकी आवाज़ बहुत शायद क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं जितना क्वेश्चन आपका समझ पाया, आप 5 लाख का एक आपके पास कहीं से रकम इकट्ठा हुई है 5 लाख की, जिसको आप निवेश करना चाहते हैं शायद अपने बच्चे के लिए, और ये आपका लॉन्ग टर्म निवेश है। मेरे हिसाब से आप मल्टी कैप फंड्स देख सकते हैं। मल्टी कैप फंड्स में आपको एक रीजनेबली एग्रेसिव येट वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा। इन फंड्स में कम से कम 25% ऑफ द पोर्टफोलियो लार्ज मिड और स्मॉल कैप में होना जरूरी है. तो इन फंड्स के जरिए आपका हमेशा कम से कम 50% पैसा मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेशित रहता है. बचे हुए 50% में फंड मैनेजर की कॉल है कि वो कितना लार्ज कैप और बाकी में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं. तो एक लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हैं और येट डाइवर्सिफाइड रहना चाहते हैं बिना बहुत ज्यादा फंड्स खुद खरीदे, तो एक मल्टी कैप फंड्स आपको ये एक अच्छा पैकेज देते हैं. एक या दो अच्छे मल्टी कैप फंड्स में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं. ध्यान रखिए इस पैसे को स्प्रेड करके इन्वेस्ट करिए. एक साथ आपके पास ये रकम इकट्ठा है, एक बार में ना निवेश करें, कम से कम 6 महीने में इसको जरूर स्प्रेड करें.
अगले कॉलर हैं शिमला से आकाश. आकाश स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
हेलो, नमस्कार जी.
नमस्कार
सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे फादर रिटायर सीनियर सिटीजन है, वो उनकी अपनी एफडीआई हैं, तो ये बताइए कि आरबीआई के बॉन्ड जो होते हैं उसमें कितना मैक्सिमम अपना इंटरेस्ट मिलता है, कहते हैं 6 महीने में इसका इंटरेस्ट आता है. दूसरा गोल्ड में अगर जाया जाए तो क्या करा जाए, एफडी के अलावा भी हम एफडी में ही बने रह सकते हैं क्या?
देखिए आरबीआई के जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है आज की डेट में 8.05% का उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ये आपको ये सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके हिसाब से आपको उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, एश्योर्ड रिटर्न वाली जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें अगर हम रिलेटिवली कंपेयर करें तो एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है. तो आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स एक विकल्प हो सकता है. आप देखिए कहाँ पे इन्वेस्ट करें, थोड़ा आप इस पर पहले गौर करें कि इस पैसे का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. क्या आप रेगुलर इनकम, जैसे आपने बताया आपके पिताजी रिटायर्ड हैं, क्या एक रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट है इस पैसे में से, या आपकी जो मासिक नीड्स हैं वो दे आर टेकन केयर ऑफ, तो ये पैसा आप लॉन्ग टर्म में ही सिर्फ इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं. अगर आप मेरी राय में आइदर विच वे, थोड़ा पैसा आपका इक्विटी में जरूर होना चाहिए क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स में जब तक आपका पैसा लगा रहेगा तो आप एक्चुअल रियल टर्म्स में कुछ कमा नहीं रहे होते क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर और पोस्ट टैक्स अगर आप रिटर्न देखते हैं तो आप खास कुछ रिटर्न बना नहीं पाते फिक्स डिपॉजिट से. तो आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ कंफर्ट के लिए फिक्स डिपॉजिट में जरूर कुछ पैसा रखें. आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स विकल्प आप देखें, लेकिन साथ में कुछ 20-25% अपना पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए थोड़ा इक्विटी मार्केट में जरूर लगाएं क्योंकि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ या कैपिटल एप्रिसिएशन आपको वहीं से मिलेगा.
आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम बिहार. टिंकू अपना सवाल पूछिए. टिंकू आप सुन पा रहे हैं हमें, अपना सवाल पूछिए.
नमस्ते सर.
नमस्ते.
हेलो
जी, अपना सवाल पूछे आप टिंकू.
नमस्ते सर, के
नमस्कार. नमस्कार जी, सवाल पूछे.
सर मेरा 42 उम्र है, ठीक है, और 2-3 बैंक का नाम देते हैं, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक, ऐसे बैंक में सर मैं मंथली क्या कहता है म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, ठीक है, SBI करना चाहते हैं, तो कितने साल के लिए मैं इसमें डालते रहे और जानकारी भी नहीं है इसके लिए, थोड़ा जानकारी बताइए.
देखिए आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना चाहते हैं तो आप मेरे लिहाज से कोई भी एक या दो इंडेक्स फंड से आप शुरुआत करें. निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करने वाले जो निफ्टी 50 इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा कोई भी एक या दो फंड से आप शुरुआत करें. आप जिस भी बैंक में आपका बैंक का खाता है आप वहां जाएं, आप उन्हें बोले मुझे निफ्टी के किसी भी दो फंड में इन्वेस्ट करना है, उनसे आप लीजिए. ध्यान रखिए कि आप को वो यूलिप ना दें, कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट इसकी आड़ में ना दिया जाए. आप निफ्टी के दो फंड में निवेश करिए. आप जितना भी पैसा मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका आप अपना एक SIP बनाएं और शुरू करें. आप शुरुआती निवेशक हैं, जानकारी का अभाव है, एक छोटे अमाउंट से शुरू करें. आज की डेट में आप 500 से 1000 रुपये तक से भी मासिक इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हैं. आप छोटे अमाउंट से शुरुआत करें, 8-10 महीने अपना SIP चलाएं, थोड़ा आपको जानकारी प्राप्त होगी, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद थोड़े बड़े निवेश के बारे में सोचें. और जहां तक कितनी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए ये कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है, आपके हाथ में है. आप ये चुनाव करते हैं कि आपको आप कभी भी पैसा कितनी भी अवधि के लिए डाल सकते हैं, इन फंड्स में से कभी भी निकाल सकते हैं. लेकिन आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए इक्विटी निवेश कम से कम 5 साल का एक अवधि अपने दिमाग में रखकर जरूर शुरुआत करें। इससे कम में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स काफी रिस्की हो सकती हैं, तो कम से कम आप 5 साल का होराइजन अपने दिमाग में रखकर आप अपना SIP चालू करें। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी फिर भी आपके पास है, अगर आपको बीच में कभी जरूरत पड़ती है तो आप जरूर पैसा निकाल सकते हैं।
जी, कोलकाता से विश्वज्योति हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हेलो
जी विश्वज्योति जी। जी
सर, हमारा क्वेश्चन है, एक्चुअली आई एम इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड फॉर फ्रॉम 2017। मेन बात क्या है, जो लास्ट 6 मंथ 7 मंथ हम लोग लॉस जो हुआ है पोर्टफोलियो में, बहुत लॉस हुआ है। अभी जो है वो मेकअप हो गया, बहुत सारे मेकअप हो गया, लेकिन अभी जो देख रहे हैं ये स्नेक एंड लैडर गेम चल रहा है। पोर्टफोलियो वैल्यू में कई घटता है, फिर मेकअप हो जाता है, फिर घटता है, लेकिन एक लिमिट का ऊपर नहीं उठ रहा है। डू यू थिंक सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन, इज देयर एनी रेगुलेटरी बोर्ड दैट दे विल नॉट अलाउ म्यूचुअल फंड कंपनीज टू इंक्रीज देयर एंड एडवाइज देयर फंड मैनेजर्स नॉट टू जंप अप द रेट? थैंक यू सर।
So your first question regarding the ups and downs, see, that is very much the part of the deal. You know, that's part and parcel of investing in equity. You said that you started investing sometime around 2017. Given that you've been an investor for the last 7-8 years, I think on an overall basis, you would have still been sitting on some good returns. If you've been disciplined, if you've invested, through SIPs or through monthly modes through this period, then I'm pretty confident that even if you were not so lucky in the choice of your investment, even if you have ended up investing in relatively poor funds, even then you would have made some handsome gains. Now, of course, notwithstanding this last 1 year or so when the markets have been up and down, but in a long-term investment journey, such phases cannot be ruled out. Every now and then markets will react sharply to certain events, and the antidote to that is really you have to stop tracking markets, or you have to stop looking at the value of your investments, or try to make decisions on the day-to-day movements of the market. Focus on the long term and continue your investments through the up and down. If you need the money in the next 8 to 10 months, 1 year, then you should certainly be withdrawing your money, because if you need this money in the next 1 year, then equity markets is a very risky place to be in at this point in time. But if you have a longer term horizon, then I think you should stop worrying about the ups and downs. Look at your individual holdings on the merits of those funds, whether they are investment worthy or not. But otherwise, don't worry too much about the day-to-day ups and downs.
I think some amount of volatility is inbuilt in this, option of investment.
Absolutely.
So moving on to our next caller from Delhi, Prabodh, apna sawal poochiye.
Yeah, good evening, everybody. For the senior citizen, basically the corpus is available, for example, but SIP and all is maybe not that much relevant. What is required is that corpus fund to be invested so that regular cash flow comes. Today the average middle or upper middle class will have some 1 to 1.5 lakh per month. I would request you to give us some idea, because 60 lakhs SCS is over, 9 lakhs MIS is over, but then you may have few crores. How to allocate that? Second question is that 5 important criteria for senior citizens to choose mutual fund for short to medium.
Sure. So your first question regarding how to allocate, see, the rules of investing really don't change depending upon your age. Okay. So for a senior citizen who is looking to derive regular income, the ideal portfolio mix should have at least, you know, some degree of equity about, you know, as a thumb rule, without going into the details of your specific case, about one third of your money, you know, as a thumb rule, should be parked in equity investments, equity mutual funds, for instance, and the balance could be in debt. Now, the debt component can be made up of senior citizen savings schemes, other fixed return avenues, as well as debt mutual funds. This portion of your money you can invest at one go in lump sum. If you mentioned about a few crore rupees, so if you're looking to invest about 60-65% in debt, this money you can invest even in debt mutual funds at one go in lump sum. There's no problem. But the equity component, despite the fact that you are looking to withdraw regular income, the equity component should still be staggered across you know, a few months to maybe a couple of years, because equity markets will still be volatile. If you invest in lump sum and then the markets fall about 20%, it will be a great source of anxiety, even more so for a retiree for whom this money is, you know, this person depends critically on this money for regular income. So it's very important that the equity component is still spread across a certain number of months to derive regular income.
कोलकाता से अनिमेश हमारे साथ हैं. अनिमेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
गुड इवनिंग मार्केट वन सर.
गुड इवनिंग,
दिस इज अनिमेश भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता.
जी,
आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू. फर्स्ट वन, हाउ कैन एनी पेंशन होल्डर इन्वेस्ट विद द म्यूचुअल फंड, एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स शुड ही लुक इनटू बिफोर इन्वेस्टिंग विद द mutual fund. And third question is, does international market affect mutual fund in any way? Thank you, sir.
Sure. So your first question, can a pension holder invest in mutual funds? Yes, absolutely. You know, from a regulatory standpoint or a technical standpoint, there is no embargo on a pension getter to invest in mutual funds. Just that, yes, the overall asset allocation, their overall investment strategy can be slightly different, because once somebody is a beneficiary of a pension, then the need for income from the mutual funds goes down a little bit. You know, there is already some income which is already coming from a fairly defined and a fairly dependable source. So this person can afford to be a little more aggressive, I believe, in constructing their overall portfolio in mutual funds. But, you know, broadly, absolutely, yes, you know, pension holder can invest in mutual funds. Regarding your question about international markets, see, any news, whether, you know, be it the source could be, you know, any international events, domestic events, you know, when such news flows come, the markets tend to react to these news flows in the short term. But as an investor, what we need to, you know, do is to overlook all the noise, because all the short term, you know, news flows, they cause markets to react in the short term, but they may have very negligible or minimal impact over the long term. And for a retail investor like you and me, that's the whole point of investing in mutual funds, that you leave all these decisions to a fund manager to decode what kind of impact these news flows it would have and what kind of, you know, strategy has to be followed at a portfolio level.
जी, आइए दूसरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं. विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में इस महीने अब तक 1,850 करोड़ रुपए का निवेश किया है. एफपीआई ने जुलाई में ऋण बाजार के प्रति तो सकारात्मक रुख दिखाया, लेकिन उन्होंने भारत के शेयर बाजारों से इसी अवधि में 5,524 करोड़ रुपए निकाल लिए. इससे पहले के तीन महीनों तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार के प्रति सकारात्मक रुख बनाए रखा था.
And our next caller is Virinder from Bhuvaneshwar. Virinder, please keep your question short as we are running out of time now.
Namaste. बड़ा छोटा सा question है. हमारे पास इंडिया में domestic funds बहुत हैं जिसमें हम long term, mid term और small cap choose कर सकते हैं. Flexi multi. कोई ऐसा expert बताएं मुझे, foreign equity fund कोई ऐसा होता है जिसमें?
जी, हिंदुस्तान में आपको इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स की एक कैटेगरी है. इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स आपको मिलेंगे, आप उनमें उसी तरह निवेश करते हैं जैसे आप डोमेस्टिक फंड्स में निवेश करते हैं. ग्लोबल या यूएस मार्केट या नैस्टैक इंडेक्स जैसे कोई भी एक आध फंड का चुनाव करके आप उसमें इन्वेस्ट करके इंटरनेशनल मार्केट्स का एक्सपोजर प्राप्त कर सकते हैं.
Well, Prime Minister Narendra Modi will be on a two-nation visit to the United Kingdom and Maldives from 23rd to 26th of this month. In his first leg of the tour, Mr. Modi will visit UK from 23rd to 24th July. And in the second leg, Prime Minister Modi will be on a two-day visit to Maldives from 25th of this month.
जी आशुतोष, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद।
लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। Domestic markets to focus on corporate earning results, India-US trade talks and IPOs for Qs next week. Foreign portfolio investors pump in nearly 1900 crore rupees into the Indian debt markets in July so far. And Prime Minister Narendra Modi to embark on a four-day visit to UK and Maldives from Wednesday. And that's it in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.